आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के समयसार गाथा 23, 24, 25 एवं कलश 22 पर प्रवचन सुनिए।
नकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, इसकी 23, 24 और 25वीं गाथा चलेगी। कल 21, 22 और 23वीं गाथा, 20, 21 और 22वीं गाथा पर जो कलश था उसकी चर्चा हुई थी। अब उसके बाद प्रश्न है कि अर्थ अप्रतिबुद्ध बोधरानाह व्यवसाया क्रियते। अब अज्ञानी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो पहले क्या था, 19वीं गाथा से अपन ने बात शुरू की है, 18वीं तक भोपाल में हो गया था, इसलिए 19वीं से यहाँ शुरू किया। ऐसे बहुत से मोक्ष मंडल हैं जो ये चाहते हैं, उनकी ये भावना है यशपाल जी के माध्यम से आई है कि हम समय सार से शुरू से लेकर के प्रवचन चाहते हैं कि जिन प्रवचनों को हम अपने आसपास के जो बहुत ऐसे भाई हैं जिन्होंने समय सार को कभी सुनाई नहीं है तो उनको कैसेट लाइब्रेरी के माध्यम से हम बनाएंगे। तो यहाँ से युगल जी के, गुरुदेव के, समय सार के, मेरे और ऐसे सबके क्लासों के 200, 200, 300 कैसेट वो खरीद के ले जा रहे हैं और वहां लोगों को सुनने के लिए देंगे फ्री में, मतलब सुनने के लिए, फिर बाद में वापस लेंगे, फिर दूसरे को सुनाएंगे, फिर तीसरों को सुनाएंगे, 10-10, 20-20 आदमियों को इकट्ठा करके सुनाएंगे, घर पे भी सुनने के लिए देंगे। ऐसा जिन्होंने संकल्प किया है ऐसे लोगों के लिए यशपाल जी ने एक योजना बनाई है और उस योजना के अंतर्गत उनकी भावना थी कि 18 तक आपने वहां कर दिए और उसके बाद 19 से यहाँ करो और जिससे वो कैसे उन्हें मिल सके। इस दृष्टि से भी और एक व्यवस्थित विषय चले, शिविर में बहुत नए नए लोग बहुत आते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी अपने बहुत गहरी तत्व चर्चा वाले व्याख्यान तो देवलाली में हो ही जाते हैं क्योंकि वहां उसी टाइप की रुचि वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये व्याख्यान शुरू किए हैं। वैसे इनमें भी कोई हल्की बात आती हो वो तो है ही नहीं, बात तो वही उच्च कोटि की है, वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आराधना की है। अंतर तो प्रस्तुतिकरण की सरलता और कठिनता में पड़ता है, विषय में थोड़ी अंतर पड़ता है। ऐसा कौन सा विषय रह जाता है जो यहाँ नहीं आता है और इस विषय में नहीं आता है। तो उस दृष्टि से 19वीं गाथा से अपन ने अभी प्रकरण शुरू किया था और मैंने तो यहाँ 22वें कलश तक और 22वीं गाथा तक समाप्त कर दिया था कल, क्योंकि आज से युगल जी के आने का प्रोग्राम था पर वो उनकी ब्रोंकाइटिस टेस्ट जो होती है ना तकलीफ, वो एकदम ज्यादा उठ गई है और इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही नहीं आए, ये भी हो सकता है कल ही आ जाए, तो इसलिए अपन तो उसके आगे जब तक वो नहीं आते हैं तब तक चलाते हैं और वे जब आएंगे जब वे चलाएंगे। उनके स्वास्थ्य की ऐसी ही स्थिति है, भोपाल का जो शिविर था उसमें आने वाले थे, घर से निकल के गाड़ी के डब्बे में बैठ गए थे, सर उनको एकदम विकल्प आया कि गर्मी बहुत है और भीड़ बहुत है, तो वे उतर के वापस चले गए घर। इसलिए उनका आने का तो जब यहाँ आ जाए तब ही समझना, वैसे यहाँ रोजाना ही लगभग फोन से संपर्क कायम है लेकिन उसे डायरेक्ट बात तो होती नहीं है, अगर उन्हें घर फोन नहीं होने से तो उनके जो ससुराल है वहां बात करते हैं प्रदीप जी के, लगभग रोज ही नहीं करते हैं। और चिट्ठी भी अभी आए थे राजकुमार शास्त्री तो परसों ही गए हैं, रूपात्मी जी ने भी चिट्ठी भेजी थी पूरा, लेकिन वो तो वो कहते हैं कि जब मैं रवाना होऊंगा तब फोन कर दूंगा, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य वगैरह की स्थिति ऐसी है। वास्तव में भोपाल भी आने में गर्मी भी बहुत थी और भोपाल और कोटा की जो गाड़ी है उसमें रिजर्वेशन नहीं होता और उसमें फर्स्ट क्लास भी नहीं है, एसी होने का तो सवाल ही नहीं है। वो गाड़ी भी ऐसी है ना कि आदमी बीमार नहीं हो वो बीमार हो जाए, सच्ची बात ऐसी है बिल्कुल। और वहां से कोटा से 12 तक तो बहुत भीड़ रहती है, शाम को 5 बजे 5:30 बजे छूट है तो वो सारे जो ऑफिस वाले हैं कम से कम 1-1.5 घंटे के वो सब उसमें बुरी तरह भर जाते हैं। अपन को ऐसा लगता है कि भी कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी में बैठ गए, गर्मी है इसलिए लौट गए। लेकिन जब स्वास्थ्य कमजोर हो और ऐसी परिस्थिति हो तो एक एक आदमी को पता चलता है, इसलिए वास्तविक वो परिस्थिति थी। ये सब अपने लोगों का थोड़ा भाग्य कमजोर है ऐसा समझना, अपने उपादान में ही कुछ कमी होगी इसलिए उनका है ना प्रवचन का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हमने जवाहरलाल जी से निवेदन किया है कि आप जाओ और आप ले आओ, क्योंकि वो उनके इतने नजदीक हैं कि वो कैसे ही भी ला सकते हैं। आज दिख नहीं रहे, शायद गए होंगे, आ गए है ना। अपन सब लोग भावना भाए तो हो सकता है कि आप उनको वो फल मिल जाए। तो 19वीं गाथा की उत्थानिका में एक प्रश्न किया था कि यह आत्मा अज्ञानी कब तक रहेगा, और आचार्य ने उसका जवाब ये दिया था, भाई ये तेरे हाथ की बात है, जब तू तक तू रहना चाहे तब तक रहेगा, तू कर्म और नोकर्म को से भिन्न भगवान आत्मा को जान ले उसी दिन विज्ञानी हो जाएगा, और जब तक कर्म और नोकर्म, कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और नोकर्म माने शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, इन सब से अपने को अभिन्न मानता रहेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। फिर शिष्य ने ये प्रश्न किया कि हम कैसे जाने कि हम अज्ञानी हैं, ऐसा नहीं कहा कि हम कैसे जाने कि बलू भाई अज्ञानी है, कि कोमल चंदी ज्ञानी है, हम एक ऐसा दूसरे के बारे में प्रश्न नहीं किया, क्योंकि शिष्य प्योर आत्मार्थी है, उसे अपने आत्मा के कल्याण करने की गरज है, है? उसे जगत का क्या होगा उसकी उतनी बात नहीं है। जगत भी यदि उसके माध्यम से कल्याण कर ले तो उसे बहुत खुशी है। टोडमल जी साहब का पढ़ के सुनाया था ना कि औरों में की रुचि देखे तो कदाचित उनको भी उपदेश आदि देकर उनके कल्याण में निमित्त बन जाए, और ना बने तो ना बने, क्योंकि उससे तेरा कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य भी ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे को पता कैसे चले। चमन भाई कहते भाई साहब दूसरे ज्ञानी है कि अज्ञानी है वो तेरे को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन तू ज्ञानी और अज्ञानी है वो तेरे को पता अवश्य चल सकता है। तो उसकी उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कर्म के उदय से तेरे को जो संयोग प्राप्त हुए हैं, शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इन सब में जब तक तेरे को अपनेपन का विकल्प आता है, आप अप्यव्यपम करे भी, अप्यव्यपम का मतलब यह है कि ये मैं हूं ऐसा विकल्प, आत्म विकल्प का मतलब यह है यहां अप्यव्यपम करे भी, माने ये मैं हूं ऐसा विकल्प तेरे को आता है तो समझ ले तू पक्का अज्ञानी है। और उन्हें 3 काल की बात घटना करके बताई थी कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा शरीर राग देश भाव, ये मैं हूं ये मेरे हैं मैं इनका हूं ऐसा भाव आता है, अथवा ये पहले मेरे थे पहले मैं इनका था, अग्नि और ईंधन का उदाहरण दिया था ना कल है ना, अथवा भविष्य में ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, ऐसा विकल्प की धारा अखंड रूप से तेरे चित्त में बहती हो तो समझ लेना तू पक्का अज्ञानी है। धारा अखंड रूप से बहती हो का मतलब क्या? कि ज्ञानी के अंदर में ये मैं नहीं हूं ऐसी अखंड धारा बहती है, और बाहर में अम्मा जी, पिताजी, भाई साहब ऐसा व्यवहार भी होता है। इसे बाहर के व्यवहार से नहीं लगाना तो दीदी, ऐसा नहीं संबंध दृष्टि हो जाता होगा तो कहते अम्मा तू मेरी अम्मा नहीं है, ऐसा नहीं बोलता है क्यों? और ऐसा भी बोलने का अधिकार है, लेकिन कब? जब है कि जब तू दीक्षा लेके जा रहा हो प्रतिसार में आता कि नहीं आता, तो वहां भी ऐसी मर्यादा है कि हे माँ, ना तू मेरी माँ ना मैं तेरा पुत्र, क्योंकि माँ और पुत्र का संबंध तो देह का है। जब मेरा देह में ही एकत्व नहीं है तो तू मेरी कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा कहने के पहले हे माँ ऐसा बोलता है, मैंने हे माँ कह के मापने का व्यवहार स्थापित किया और अब संबंध तोड़ना है इसलिए ये बात कही। इसे तो संबंध तोड़ना नहीं है स्त्री से और पुत्र से, और बात ऐसी करता तू मेरी स्त्री नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, नहीं सीधे जाओ फिर क्या? ये नकली अध्यात्म की बातों से कोई फायदा नहीं है। जगत को बेवकूफ बनाया जा सकता है ऐसी बातें करके, लेकिन अपना कल्याण इससे होने वाला नहीं है। हम अपने अंदर को पहचाने सच्चे हृदय से, अंदर की धारा में पूनमचंद जी साहब इन सबके प्रति देह एकत्व का विकल्प बरतता है कि नहीं? मैंने कल उदाहरण दिया था कि वो दूध का बह रहा हो दरिया, तो अंदर वो यदि फूट जावे तो दूध की पिचकारी निकलती है उसमें से, ख्याल में आया ना? तो ऐसे ही गाय के स्तन में लबालब दूध भरा हो और वो कहीं से प्रेशर पड़ के दब जाए तो उसमें से दूध की पिचकारी निकलेगी, उसमें से छाछ की पिचकारी नहीं निकलेगी, उसमें तेल की पिचकारी नहीं निकलेगी, पानी की नहीं निकलेगी। तो अंदर में तेरे धारा बह रही हो देहादिक में अपनेपन की, तो विकल्प में भी वो ही पिचकारी निकलेगी। जो कहने का व्यवहार अलग बात है, यहां जो बात कर रहे हैं वो अंदर के धारा के बहने की बात है। इससे ये पहचाना जा सकता है कि तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है। भूतमल जी साहब जान सकते, अपना 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 निर्णय कर लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इज्जत भी सुरक्षित है। यदि हम अज्ञानी हैं तो किसी से कहेंगे तो इज्जत जाएगी, और कदाचित ज्ञानी है तो कह सकते हैं ना कि तो भी कहोगे तो इज्जत जाएगी। क्यों इज्जत जाएगी? इसलिए जाएगी क्या लोग कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ, प्रमाण मांगेंगे, जगत बहुत नालायक है, ऐसे आसानी से नहीं मान लेंगे, क्योंकि इस जगत में नकली कहने वाले भी बहुत हैं। इसलिए बेचारे असली वालों को भी इसका सामना करना पड़ता है। एक नालायक हो तो उससे हजारों लायकों को परेशानी में पड़ना पड़ता है ना। जैसे कि अब देखिए प्लेन में तो कोई बम लेके जाता पटकता तो लाखों में से करोड़ों में से एक आध होता है कि नहीं? रतनलाल जी साहब, और जांच सबकी होती है, अच्छे अच्छे भले आदमी को साधु संत हो, देवी यदि प्लेन में जा रहे हो साधु संत माने, कोई नंग नंग मुनिराज की बात नहीं, ब्रह्मचारी लोग जाते हैं ना जो आजकल जाते हैं सितंबर, तो साधु लोग भी जाते हैं, तो उनकी भी जांच होती कि नहीं होती है? क्यों कैसा? हम तो अब जांच नहीं कराएंगे, समझते नहीं हो, हम तो अनुमृत महामृत के धारी हैं कि महाराज प्लेन में जाएगा तो पूरी जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि यहां वे जो बम ले जाते हैं वे भी कम साधु बन के नहीं आते हैं, करानी पड़ती क्या नहीं? तो एक नालायकी करता है तो उससे हजारों योग्य लोगों को भी उस परीक्षा में से पास होना पड़ता है। जहां हजारों नालायकी करने वाले हों और वहां एकाध ज्ञानी असली हो तो उसे उस परीक्षा में से पास होना पड़ेगा, तो कौन सा गजब है बसंत भाई। तो जगत में लायक है, अरे जगत में लायक है, लायक हो, लेकिन वो क्या करे। दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और हमारे गुरुओं का भी आदेश है, तीर्थंकर परमात्मा का भी, कि बिना परीक्षा किए भगवान को भी मत मानना। समंत भद्र कहते हैं नास्माकं परीक्षा प्रदाना नाम, क्या लिखा मालूम उसमें, आज देवागम स्तोत्र में आता है कि मानो भगवान महावीर आकर समंत भद्र से कहते हैं कि हे समंत भद्र, तू मुझे क्यों नहीं मानता है, तू मुझे नमस्कार क्यों नहीं करता है, तू देख मैं तीर्थंकर हूं तीर्थंकर, और मैंने एक धर्म चलाया है। तो समंत भद्र कहते नास्माकं परीक्षा प्रधाना नाम, हम जैसे परीक्षा प्रधानियों के द्वारा ऐसी बातें करने से हम मानने वाले नहीं। मानो भगवान महावीर से करे। संत कुमार जी ये मूल शब्द बोलता हूं मैं आपको, तीर्थ कृत समय आनांच परस्पर विरोधता सर्वेषां माप्तता नास्ति कष्ट देवे भवेद गुरु। तुम तीर्थंकर हो तो क्या हुआ, हो के नहीं हो कौन क्या गारंटी है। तीर्थंकर कहने वाले उस वक्त 10-20 थे, मक्खली गोसाल भी अपने को तीर्थंकर कहता था। महावीर के जमाने में उसी समय 10-15 आदमी ऐसे थे जो अपने को तीर्थंकर घोषित करते थे। तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करूंगा। कि तू परीक्षा करेगा, एक नागा बाबा कहता मैं परीक्षा करूंगा, अरे बड़े बड़े देवता मेरे चरणों में आके लौटते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था ना तो सौधर्म इंद्र आकर मेरे दरवाजे पर नाचा था, तू समझते क्या हो। देवीलाल जी साहब है ना, ये सौधर्म स्वर्ग आकर के इंद्र आकर मेरे दरवाजे पर नृत्य करता था, और मेरा सुमेर पर्वत पर जाकर पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ था, और अभिषेक का घड़ा कितना बड़ा था तेरे को पता है, तू बात जांच करेगा मेरी। अरे मेरे जन्म के समय भी देवों का आगमन हुआ था, इसका नाम देवागम। तो देख देख मैं आकाश में चलता हूं, नभो याने, जमीन पर मेरे पैर ही नहीं पड़ते हैं। अब हम लोग कहते हैं आजकल तो उसके जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते हैं। और चामरादि विभूतिया सब ईशान और सनत कुमार इंद्र जैसे मेरे चारों तरफ खड़े होकर चमर ढोलते हैं। अरे कहता है मैं तेरी जांच करूंगा, अरे मेरे स्वागत के लिए 1000 आदमी बाहर माला लेकर के खड़े हैं, और ये इनकम टैक्स का साधारण सा इंस्पेक्टर कहता है कि आप प्लेन में से उतर के आए होगा तो मैं आपकी पेटी चेक करूंगा। क्या वे खड़े होंगे ऐसे रोजाना स्मगलरों के भी 1000-1000 आदमी माला लेके आकर खड़े रहते हैं, और वो भी खादी के कुर्ते में आते हैं बढ़िया टोपी वोपी लगा करके। मैं तो तुमको जांच करूंगा, पेटी खोल के दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी। समंत भद्र कहते हैं मैं तो वो साधारण कस्टम का वो हूँ इंस्पेक्टर, भगवान महावीर मैं तुम्हारी जांच करूंगा, लाइन से मैं खड़े हो जाऊं। देवागम नभो याने ताम्रादि विभूतिया, तो मन क्या जवाब देते हैं, ये तो भगवान ने कहा मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार में है, भगवान ने ये कहा मानो, भगवान ने ये कहा। तो समंत भद्र कहते हैं जाओ जाओ, माया विश्व भी दृश्यन्ते, ये बातें तो मायावियों में भी देखी जाती हैं, वहां भी देवता आ सकते हैं क्या। अरे मेरे बेटे की शादी में तो प्रधानमंत्री आए थे, मिनिस्टरों की लाइन लगी थी कि हर स्मगलर के शादी में आ जाते हैं, उनमें क्या है, क्योंकि उनको फंड में पैसा तो दे ही देते हैं चुनाव में, आ जाएंगे उसमें क्या दम है, और फिर वही गला दबाने लगेंगे कि मेरा गला बताते हो कि नहीं बताते हो, नहीं मैं बताता हूं कि मैंने कब कितने दिए थे। तो सारे देश को मालूम है कि चुनाव फंड में दिया, चुनाव में इतना खर्चा हुआ है, तो ये कोई गरीबों ने दिए है ना, क्यों अब किसी ने रोकड़ में लिख के दिए हैं क्या, क्यों सब ऐसे ही आए हैं, इसमें क्या है। जब तू यही कहता है कि मैंने चुनाव फंड में दिए थे, तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे ही क्या बनता है, ये इसको पर्सनल दिए थे और इसने घर में रख रहे तो केस बनता है, क्यों तो वो चुनाव फंड में दिए थे, और जिसको चुनाव फंड में दिए थे उसके चुनाव फंड में जमा नहीं हुए हो तो केस बनता है, कभी देख कांगे तो ये तो वो कहेगा जिसको तुमने चुनाव फंड में दिए थे वो कांग्रेस पार्टी, कि हमारे चुनाव फंड में जमा हुए कि नहीं हुए, क्यों ऐसा आता है वो संबंध में, कहते हैं नहीं ये बातें तो मायावियों में भी देखी जाती हैं, देवता भी आ सकते हैं और आकाश में तो पक्षी भी चलते हैं, और चमा चाम ढोड़ने में क्या दम है, 20 रुपया रोज के 10 मजदूर खड़े कर दो तो चामे ढोने लगेंगे, उसमें क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जब वो आ रहे थे ना नेताजी इसी ट्रेन से, तो बुला करके 100-200 मजदूर इकट्ठे किए कि तुम्हें मालाएं पहनानी है, तो उन्होंने मजदूरों को इकट्ठे किए, 20-20 रुपया दिए उनको 2-2 घंटे के, क्यों, और फिर बाद में उन्हें मालाएं भी खरीद के लाके दे दी, तो वे सब बाहर खड़े रहे और वे सब ट्रेन से उतरे के मालाएं लेने वाले आएंगे आएंगे आएंगे, आओ ना वही खड़े रहे, आए क्यों नहीं, कि साहब प्लेटफार्म टिकट के पैसा तो दे नहीं है, अंदर कैसे आए, जब 20-20 रुपया दिए है ना, तो वो तो हमारे 2 घंटा की मजदूरी है, प्लेटफार्म टिकट दो तो अंदर आ जाएंगे, बाहर तो ना देंगे, हमें क्या है, तो चमन ढलाने में क्या दम है। मैं नहीं मानता हूं, समन्त पत्र कहते हैं भगवान के लिए जो 64 समय ढुले थे उनके लिए कहते हैं कि इन बातों से तुम हमें बुद्धू बनाना चाहो तो हम बनने वाले नहीं हैं, जबकि वो खुद जानते हैं समन्त पत्र भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं। इतना परीक्षा प्रधानी धर्म है प्रदीप जी, ये जैन धर्म का देखो तो उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगा, ये आसान नहीं है, ये नहीं मानेगा, ये नागा बाबा है, मानेगा नहीं। तो कहा सुन सुन और बात सुन भाई, ठंड नरम हुई, गर्मी से काम नहीं चलेगा। अरे भाई अध्यात्म बहिरव पेशा विग्रह आदि महोदया, मेरे अंतरंग और बहिरंग बहुत से अतिशय हैं, अकेले देवता ही नहीं आते हैं, मेरे को भूख नहीं लगती है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि हर पार दिख जाता है, अंतरंग और बहिरंग ऐसे बहुत से अतिशय मेरे में प्रकट हो गए हैं, पसीना नहीं आता है, दुनिया को पसीना आता है, बहुत महान उदय है, रेनु रेनु इन बातों से भी मानने वाला नहीं हूं, क्यों, क्योंकि ये तो स्वर्ग के देवताओं में भी देखा जाता है, दंतर भूत प्रेतों में भी ऐसा शरीर होता है कि आर पार दिख जाए और उनमें मसीना नहीं आवे और मलमूत्र नहीं हो गए, नाखून नहीं बढ़े, ऐसा तो उन भूत प्रेतों में देखा ना, दिव्य सत्व दिव कस्व राग आदि मत्सुषा, वे जो देव स्वर्ग के देवता हैं, वे राग देश के धनी हैं, उनमें भी ये बातें पाई जाती है, नहीं मानने वाला। अरे भाई मैंने धर्म प्रचार का बहुत काम किया है, लाखों लोगों को जैनी बनाया है, मैंने एक धर्म चलाया है तीर्थ कृत समयानंत है, तो कहते हैं तीर्थ कृत समयानंत है, परस्पर विरोधता सर्वेषां माप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद् गुरु, ऐसी तो बहुत कहने वाले हैं परस्पर विरोधी बातें। बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपलो नेति का प्रमा, कपलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमा, कपल यदि सर्वज्ञ है तो बुद्ध क्यों नहीं, और बुद्ध यदि सर्वज्ञ है तो कपिल क्यों नहीं, और दोनों यदि सर्वज्ञ है तो मतभेदा कथन तयो, ताब बहु यदि सर्वज्ञ मतभेदा कथन तयो, तो उनमें मतभेद क्यों है, इसलिए मैं नहीं मानता। विदम है, मानता जाता है, नमस्कार भी करता जाता है, और कहता है नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, तो तेरा गुरु है कौन, कष्ट देव भवेद गुरु, अरे कोई तो गुरु होगा, किसी को तो मानता है, दीक्षा वैसे ही ले ली है क्या, कष्ट देव भवेद गुरु, कोई तो गुरु होगा, कि हाँ चिदेव भवेद गुरु, चैतन्य आत्मा ही गुरु है, चिदेव कि तू मानता तो है, कि मानता तो हूं, इसलिए मानता हूं कि तुम सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, और तुमने जो बात कही है वो आगम के विरुद्ध नहीं है, उनमें परस्पर विरोध दिखाई नहीं देता है, और तरक्की कसौटी पर कसने से बिल्कुल सही साबित हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मानता हूं। क्यों, हम कोई और अच्छे अमच्छों के कारण नहीं मानते हैं, हजारों लोग आते हैं इसलिए नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री ने जो बात कही है वो 45 वर्ष तक लगातार, उसमें कहीं पूर्वा पर विरोध देखने में नहीं आता है, जिनवाणी से कहीं विरोध नहीं आता है, और तरक्की कसौटी पर खरी उतरती है, इसलिए मानते हैं। और यहाँ वहां की जो बातें बहुत हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, उनके कारण नहीं मानते, क्यों नास्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, हम तो कुंद कुंद के साथ साथ उस समंत भद्र के भी शिष्य है ना, क्यों प्रोफेसर साहब, तो आचार्य यहां ये कहते हैं भाई कि ज्ञानी तेरे को अंदर में जो विकल्प आवे देह में एकत्व बुद्धि का, तो समझ लेना मैं अज्ञानी हूं, धारा बहती हो अखंड, ऊपर ऊपर से वाणी में वाली बात की बात नहीं है, हृदय में जांच के देखना अखंड धारा बह रही कि नहीं बह रही, क्यों, तो समझ लेना अज्ञानी है, वो तो किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है, और यदि ये लग जाए कि नहीं नहीं ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी धारा है तो समझ लेना मैं ज्ञानी हूं, लेकिन कहना नहीं, नहीं तेरे जगत तो समंत भद्र जैसा कहेगा व्हाट इज द प्रूफ, और तेरे को प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानेगा जगत, मुझे क्या जरूरत है प्रूफ देने की, तो कहने की क्या जरूरत है, कहेगा तो प्रूफ भी देना पड़ेगा, समझे ना, तो ये प्लेन में बैठ के जाना है तो जांच करवानी पड़ेगी पूरी, ख्याल में है ना, एक देश से आया है और दूसरे देश में जाना है तो कस्टम में चेकिंग करानी पड़ेगी, ये कोई रास्ता नहीं है, यदि तेरे को नहीं जाना है तो कोई तेरे से चेकिंग कर, घर में कौन तेरा कस्टम वाला चेकिंग करने आता है, तू अंदर में भगवान आत्मा ज्ञानी हो जा, लेकिन यहां तो तेरा प्रश्न है मैं कैसे जानू कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं, तो अंदर की जो धारा अखंड बह रही है उसमें देख लो कि इसमें देहादिक में आत्म विकल्प है कि त्रिकाली ध्रुव के बारे में आत्म विकल्प माने मैं ये हूं, ये चर्चा हुई थी और कौन सी 20, 21 और 22वीं गाथा में, फिर उन्होंने अंत में कलश में कहा था कि भाई तू इतना समझ ले कि आत्मा और पर पदार्थ इनमें किसी भी काल तादात्म्य वृत्ति नहीं हो सकती, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, अब इतनी बात कहने के बाद कहते हैं कि अब जो ज्ञानी हो उनने तो अपने में ज्ञानी समझ लिया होगा तो वे तो अपने में समा जाए, अब बाकी के जो अज्ञानी बचे अर्थ अप्रतिबोधनाय व्यवसाया कृते, अब जो अप्रतिबुद्ध है उनको समझाने का व्यवसाय मैं करता हूं, कुंद कुंद कह रहे मैं धंधा करता हूं, क्या क्या अप्रतिबुद्ध बोधनाय, जो लोग कहते हैं ना समय सार ज्ञानियों के लिए लिखा है, इसमें कितना साफ लिखा है कि अप्रतिबुद्ध मैंने अज्ञानियों को समझाने के लिए लिखा है बाबूजी। जो लोग कहते हैं तो मुनिराजों का ग्रंथ है, अरे इसमें ये लिखा है कि देह और आत्मा एक नहीं है, ये बात समझा रहे, तो क्या मुनिराजों को ये बात समझानी पड़ती होगी? मुनिराज ये नहीं समझते हैं कि देह जुदी और आत्मा जुदी है, क्यों तो ये समझे बिना मुनिराज हो गए हैं? ये समझे बिना मुनिराज हो सकते हैं कि हसनलाल जी साहब, इसमें लिखा है शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद तेरे नहीं है, तो महाराज को समझाएंगे कि मकान तेरा नहीं है, स्त्री तेरी नहीं है, बाल बच्चे तेरे नहीं है, वे पहले ही छोड़ चुके कि तुम तो कोई बातें करते हो कि ये हमारे नहीं है, अभी उनके बीच रहते हो और हमें समझाने आए स्त्री पुत्र बाल बच्चे मेरे नहीं है। बारे बार मैं आपसे पूछता हूं, कुंदकुंद स्वामी अपने उन शिष्यों को ये समझाते होंगे स्त्री तेरे नहीं है, बच्चे तेरे नहीं है, जमानत घर तेरा नहीं है, अरे दे तो छोड़ के दीक्षा तो उनने ये मान के कि ये मेरे नहीं है, ये छोड़ के तो दीक्षा ली है, ये तो उनके लिए है कि जो इसमें रचे पचे बैठे हैं, मैं जो लोग एमए की बातें कह के इसकी छुट्टी करना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं ये पहली क्लास की बात है, बुद्ध बोध नाय है ना आपकी किताब में व्यवसाया क्रियते, देखो हिंदी पढ़ के बताता हूं, अब अप्रतिबुद्ध को समझाने का लिए प्रयत्न करते हैं क्या बसंत भाई, ऊंची ऊंची बातें बताओ, कुंद कुंद ये छोटी बात कही होगी, समय साल में कोई छोटी बात लिखेंगे? अरे ये ऊंची बात है, जैसे 100 पहाड़ों में से एक पहाड़ी नहीं छाटी जा सकती, 100 भैंसों में से एक भैंसी नहीं छाटी जा सकती है, ख्याल में है ना, ऐसे ही 100 हीरो में से एक कांच का टुकड़ा भी नहीं छाटा जा सकता है, तो समय सार की तो गाथा गाथा हीरा है, उसमें कौन अच्छी और कौन बुरी, कौन छोटी और कौन बड़ी, हम तो जैसे जैसे छोटी माने तो छोटी और बड़ी माने तो बड़ी, क्यों सुमन भाई, ये जो कह रहे हैं आचार्य, हम तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, किसको? अप्रतिबुद्ध को, अपना नंबर किन में है? यदि अप्रतिबुद्ध में है तो ये समझो कि हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है पंडित जी ने कह दिया गहरी बात देवलाली में करेंगे, अब देवलाली में सुनेंगे, अभी हम आ गए तो एक घंटा काटना, ऐसा बैठ के सुनोगे तो कुछ हाल नहीं लगेगा है? जो बात आ रही है उसको महान बड़ी अद्भुत आश्चर्यकारी जीवन में परिवर्तन कर देने वाली है, इस श्रद्धा के साथ सुने तो वो ख्याल में आएगी। देखो गाथा बोलता हूं, अन्नाने मोहित मदी मज्जवेणम मेणम भरति पुग्गलम दब्बम बद्धम अवद्धम चतहा जीवो बहुभाव संयुक्तो सब्बन्नुनाने दिखो जीवो उवयोग लक्षणो निचम कैसो पुग्गल दब्बी भूदोजम भणसी माध्यमिणम जदिशो पुग्गल दब्बी भूदो जीवद्यमागदम मिदरम तो शक्को भक्तुम जे मध्यमिणम पुग्गलम दब्बम। क्या कहते हैं? बहुत मार्मिक बात है। अन्नान मोहित मदी, अज्ञान से मोहित हो गई है मति माने बुद्धि जिसकी, हे अज्ञान से मोहित मति वाले जीवो, अज्ञान मोहित मदी, क्या कहते हैं? अज्ञान से मोहित जिनकी बुद्धि है वो क्या कहते हैं? मध्यमिणम पुग्गलम दब्बम, एक उद्गल द्रव्य मेरा है, मध्यमिणम माने मेरा है, कौन सा पुद्गल द्रव्य जवाहरलाल जी, कौन सा पुद्गल द्रव्य? सुमेरु पर्वत, बद्धम अवद्धम चित्तहा, बद्ध और अवध जो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बद्ध है, ऐसा द्रव्य कर्म और नोकर्म शरीर और अवध स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो जरा दूर है, लेकिन सुमेर पर्वत नहीं लेना है इसमें, क्यों? जिस पुण्य के उदय से या पाप के उदय से जिसमें लोक में तेरी अधिकार जिस पर है उसकी लेना, जिसे तू अपना मानता है। सुमेर प्रभु को तू अपना कभी मानता ही नहीं है। अमेरिका मत लेना है इसमें, हिंदुस्तान लेना। क्या बात करते हो, अमेरिका भी एक देश है और हिंदुस्तान भी एक देश है। हिंदुस्तान क्यों लेना और अमेरिका क्यों नहीं लेना? डॉक्टर साहब प्रभाकर जी, क्यों? कि तुमने हिंदुस्तान मेरा है ऐसा माना है, अमेरिका मेरा है तुमने कभी माना ही नहीं है, तो काय को जबरदस्ती उसको लेना? बद्धम माने शरीर के साथ एक क्षेत्र आप गाय रूप से बना और जन्म से लेके मरण तक का साथ जिसका पक्का है उसको यहाँ कहते हैं बद्धम। और तेरे पुण्य से बंधा है, आत्मा के प्रदेशों से नहीं बंधा है। जब तक तेरा पुण्य है तो तेरे संयोग में है। क्यों? ये मकान अपना है बाबूजी, कब तक? नहीं नहीं रजिस्ट्री कराइए। बिल्कुल क्या, जब तक, अरे जब तक अपने पुण्य का उदय है तब तक है। कल एक सिद्धांत परसों बताया था, आपको याद है पंडित जी साहब? ये मत समझना कि हमने 10 लाख रुपया देकर के मकान खरीद लिया तो अब वो हमारा अनंत काल तक के लिए रह गया। सबरा जी, क्यों क्यों नहीं रहेगा? अरे वो जो खरीदते वक्त जो पैसा देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ता है, और फिर उसका 12 मासी भवन कर, भूमि कर, कितने 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 देने पड़ते हैं। जितना लोग किराए से देके रहते हैं माल की बालों को, उससे ज्यादा भरना पड़ता है। क्यों? भाई 1000 रुपए मिले किराए से रहते हैं तो उनको 5000 भरना पड़ता है, मुझे पता नहीं कितना कितना भरना पड़ता होगा। कभी भव में पता चलने वाला भी नहीं, अगले भव में चले तो चले। बसंत भाई, ऐसे ही पुण्य का भी है कि जिस समय हमें वो प्राप्त हुआ शांति भाई, वो उसी समय पुण्य खर्च हो गया, ऐसा नहीं समझना। प्रति समय पुण्य खर्च हो रहा है रतन लाल जी साहब, तब वो आपके पास कायम है। इस कर्म की व्यवस्था है फिलोसफी, वो पुण्य का उदय आ रहा है तो वो कायम। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए पुण्य नहीं चाहिए, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिके रहने के लिए प्रति समय नया नया पुण्य चाहिए। और जिस दिन वो जरा सा पुण्य क्षीण होता है ना, तो जिसने बना के बैठा जाता है वही टांग खींचने लगता है। ऐसा सब जगह है। पुण्य निरंतर खर्च होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है आपकी जब आप एक दफा हो गया वो दे दिए तो पुण्य, पुण्य निरंतर खर्च होता है। अब वो कब खुट जाएगा ये तुम्हें पता नहीं है, और जिस वक्त खुट जाएगा कैसे जाएगा, मैंने पुख्ता इंतजाम किया है। वो पुख्ता मुख्ता एक तरफ रखा रहेगा और एक सेकंड में तेरे हाथ से निकल जाएगा। ये राजाओं के राज निकल गए ना, क्यों? तूने यहां से क्या गलती की थी? हमने तो साहब कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारा पुण्य खुट गया था तो एक मैं लोकसभा में प्रस्ताव पास, राष्ट्रीय कर खत्म, एक मकान से दो मकान दे दिए, वहां प्रस्ताव पास होगा तुम्हारे 10 मकान फटाफट चले जाएंगे। तो करना क्या करते हो? और पुण्य नहीं खुटा है तब तक सब है। एक एक समय संयोग। जैन दर्शन तो कर्मबद्ध वाला और क्रमबद्ध वाला दर्शन है। तो यदि तुम क्रमबद्ध मानो तो भी एक एक समय का नक्की है, कब तक तुम्हारा कौन सा संयोग रहेगा, एक एक समय का है दादा, नक्की समझ लेना। अरे या तो वो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। क्यों? वो चले जाएंगे हम चले जाएंगे, एक एक समय का क्रमबद्ध में नक्की है। और क्रमबद्ध में भी इस भव का तो नक्की है ही है। कर्म जो बंधे हैं जो उदय में आएंगे उनके निमित्त में जो है, और अभी हमें तो पता नहीं, ना तो क्रमबद्ध का पता है और ना कर्मबद्ध का पता है कि अगले समय में कौन सा कर्म आया है आप में। द्वारिया जी, अजमेर छोड़ के आए ना और बम्बई लौट के जाओगे तो फ्लैट तुम्हारे कब्जे में रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? घबराना नहीं, रहने वाला है, नहीं तुम्हारी आकुलता हो जाए। सच्ची बात है, गंभीरता से विचार करना, मेरे कहने से नहीं मानना। इसमें लिखा है बद्धम अबद्धम तथा, ये तो अभी आगे की गाथा में क्या लिखा है, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए ये बात लिखी है। देखो क्या लिखा, देखो पढ़ता हूँ। सब बनु नानि दिठो जीवो उवयोग लक्षणो नित्यम कैसो पुगल दब्बी जो जो बनसी मां जमिनम। अरे सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में तो ये झलका है कि तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तू कैसा पागल हो गया है जो कहता है पुद्गल दृढ़ नीरा है। ये भगवान की कसम दी है, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये झलका अपने से गवाही देते है ना, राम कसम राम की दुहाई देके कहता हूँ ये तुम्हें सर्वज्ञ भगवान की दुहाई देके कह रहे हैं, तेरी माने या सर्वज्ञ की माने। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये झलका है, वही तो क्रमबद्ध पर्याय है, मैंने इसी में इसी का अर्थ किया है, वो अपनी तरफ से कोई विषय नहीं पलटा है, तो बोला ना क्रमबद्ध पर्याय में है, मैंने सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका अपन बोलते जो जो देखी बीतराग में सो सो होशी बीरारे अनहोनी कबहू नहीं होशी काहे होत अधीरारे। सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है वो होने वाला है, कल क्या होने वाला है ये भगवान को पता नहीं है, ज्ञान में नहीं है कि नक्की है, नहीं है कोई किसी को नक्की करना है, हम थोड़ा प्रयत्न करके कर सकते हैं, कोई थोड़ी कोशिश करे यहाँ हाथ पैर मारे क्यों तो हो जाएगा। सुमन भाई खूब सारे हिंदुस्तान में दौड़े, मैं तो पैसा इकट्ठा करूंगा, एक देने वाला नहीं, सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका होगा वही मिलने वाला है, ऐसा माथा मारो सिर के बाल उड़ जाएंगे, एक नहीं मिलने वाला है, और मिलने वाला होगा बरसेगा, बोलो विकल मिकल। सर्वनु नान दिठो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब झलका हुआ है, जो हो रहा है ऐसी जो सभा बैठी है ना, और आप लोग सुन रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक्त में ये शब्द बोले हैं, ये महावीर भगवान के केवल ज्ञान में पहले ही झलक गया था, आज तो झलक ही रहा है, लेकिन 2500 वर्ष पहले भी झलक गया था, और आदिनाथ के पहले में अरबों वर्ष पहले झलक गया था कि नहीं, कोई दुनिया की ताकत थी कि है कि इसको पलट सकता है संयोग को। क्या लिखा, सबन्नु नानु दिठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में ये दिखा है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, और नीचे क्या लगा, यदि जो पुद्गल दब्बो भूदो जीवत मांगणम इधरम तो सको बस तुम ते मज्जमणम पुद्गलम दिब्बम। यदि क्या हो, तू पुद्गल हो जा तो ये कह सकता है कि पुद्गल दृढ़ मेरा है, या पुद्गल जीव हो जाए तो तू ये कह सकता है कि पुद्गल मेरा है, बोल एक कीमत चुकाना है। तुम मुसलमान की लड़की से प्रेम करने लगा तुम्हारा लड़का, तो कह मैं तो इससे शादी करूंगी करूंगा, तो वो क्या लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करने को राजी हूं, लेकिन मेरे पापा की मंजूरी तुम्हें लेनी पड़ेगी, मेरे पापा के सामने जाकर के तुमको मेरे हाथ मांगना पड़ेगा, जब मैं तेरे पापा के पास तो नहीं जाऊंगा, तो भूल जाओ मेरे को, सोच लो क्या, हाँ मैं तेरे लिए तेरे पापा के पास मांगने भी जाऊंगा, दुनिया में तो लड़की वाले आते हैं लड़कों के पापा के पास, लेकिन मैं तेरे पापा के पास भी जाऊंगा। और उसके पापा के पास गया कि बेटा तुम बहुत योग्य है, और तेरे हाथ में लड़की देने को मेरे को कोई संकोच नहीं है, लेकिन तेरे को मुसलमान बनना पड़ेगा। क्या तेरे को मुसलमान बनना पड़ेगा, बोल चाहिए कि नहीं, तेरे को तेरा निर्णय तेरे हाथ में है। भगवान सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, कुंदकुंदाचार्य कह रहे कि सर्वज्ञ के ज्ञान में ये बात झलकी है कि जीव कभी पुद्गल नहीं होगा और पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। अब तेरे को पुद्गल चाहिए, चाहिए हो तो नक्की कर ले, तेरे को पुद्गल बनना पड़ेगा, तू पुद्गल बनने को तैयार हो तो तेरे को मकान जायदाद रुपया पैसा सब हम देने को तैयार है बाबू जी। ठीक है, क्या लगा, यदि तू पुद्गल दब्बी भूदो, यदि तू पुद्गल द्रव्य हो जाए तो तू ये कह सकता है कि पुद्गल द्रव्य दे रहा है, तो इसका हाथ थाम सकता है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। क्या बात है, छोटी बात है, लेकिन हम तो हिंदू भी अपने को बने हुए हैं, मुसलमान की शादी करे, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मुसलमान बनी रहे और मैं हिंदू बना रहा हूँ तो हम दोनों शादी भी कर लें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे से शादी करके वो लड़की हिंदू बन जाए? कि नहीं हो सकता। माने मैं क्यों पुद्गल बनूं, पुद्गल जीव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है? कि नहीं हो सकता। क्यों? कि तू लड़की पे रींझा है, लड़की तेरे पे नहीं रींझी। लड़की तेरे पे रींझी होती तो ऐसा भी हो सकता था कि उसे हिंदू बनना पड़ता। ठीक है ना पंडित जी साहब? रींझा तो तू है ना, पागल तो तू हुआ है ना, पुद्गल थोड़ी तेरे पे रींझा है। पुद्गल तेरे पे रींझा होता तो भगवान उससे कहते कि बेटा तेरे को जीव बनना पड़ेगा वो। लेकिन वो तो कहता मुझे किसी का बनना ही नहीं है, लेकिन तेरे को चाहिए ना पुद्गल दृद्ध, तू रींझा है ना तो तेरे को पुद्गल बनना पड़ेगा बोल। और लोक में भी इस बात का समर्थन है। कहाँ समर्थन है प्रदीप जी? क्या जो पुद्गल पे जो बोले वो तो जड़ हो गया, उसे जड़ बोलते ना, जड़ पे रींझा हुआ उसे जड़ हो गया। मुसलमान लड़की के पीछे पागल हो गया तो वो मुसलमान हो गया, बोलते कि नहीं बोलते है ना? ऐसे जड़ पे रींझने वाला जड़ है, मूर्ख है, अज्ञानी को जड़ कहते कि नहीं कहते? वो जड़ बुद्धि है, बुद्धि भी जड़ होती है, समझे ना? तो इसलिए कहते देख रहे हैं, जो सबको बतमजे मध्यमणम पोगलम दब्बम, तो फिर तुम कह सकता है पुद्गल द्रव मेरा है। देखो अब टीका में कहा है, बहुत मार्मिक बात है, टीका में तो ऐसा शब्द लिखा है कि एक दफे हृदय में भिद जाए। देखो बीच में देखो पेज ना चारों चार आठ आठ नौमी लाइन देख, ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है कि हे दुरात्मन, हे आत्मघात करने वाले। कितने बढ़िया विशेषण दिए हैं अपने को, अभिनंदन पत्र है। संस्कृत में देखो पांचवी लाइन ऊपर, हे दुरात्मन आत्मपंसन जही जही परमावेक, इस परम अविवेक को छोड़ छोड़ छोड़, ये हाथी जैसा घास और अनाज को मिलाकर खाने जैसा जो ये व्यवहार है इसको छोड़। ऐसा लगा हे दुरात्मन, हे आत्महत्यारे, आत्महत्या लगा ना, आत्मपंसन आत्मा को कैसा शब्द है, कितनी करुणा आई है उनके हृदय में, कितनी करुणा में से कितना कठोर शब्द निकला है। देखो ऊपर से अभी ये मुनियों का शास्त्र होगा तो मुनियों को कहेंगे हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। क्यों ये किससे कह रहे होंगे? क्यों बाबूजी? उनसे तो ये कहेंगे हे महात्मन। शिष्य भी हो तो क्या, हमारा शिष्य भी हो तो क्या, छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाला संत है, गुरु भी और शिष्य भी दोनों। तो गुरु जब उपदेश दे रहा हो तो छठवीं में गारंटी से है, और शिष्य सामायिक कर रहा हो तो वो सातवीं में है। क्यों? तो उसे दुरात्मन कहेंगे? ये भाषा किसके लिए व्यवहार होता है, किसके लिए हो सकती है? आप सोचो, ये तो बद्र अज्ञानी के लिए भाषा है। भैया हमारे लिए है समय साहब, ये दूसरों के लिए नहीं है। हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। देखो अब ऊपर से पढ़ते हैं टीका, ये तो मैंने बीच की लाइन बताई आपको कैसी भाषा है। ये इसलिए भी मैं पढ़ रहा हूँ कि हमने तो बड़ी बड़ी छठवीं सातवीं ग्यारहवीं सिलेक्टेड गाथाएं, तो ये जो हमारा अभिनंदन पत्र वो पढ़ने से रह गया। तू भगवान आत्मा, तू भगवान आत्मा, तू भगवान आत्मा, भाई वही वही पढ़ा मैं। अनाज अनंत ध्रुव एक स्वाभाविक ज्ञान का घनकंद, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, तो थोड़ा ये भी तो देख ले। क्यों ये भी समय सार में लिखा है, कोई गोमर सार की बात थोड़ी है। लिखा ना समय सार में। क्यों देखो पन्नालाल जी, एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस जो अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभाव भावत्व को जिसको कि समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं ही विमोहित है ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके उन अस्वभाव भावों को ही जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभाव भावों को ही अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है ये अज्ञान है। बस देखो भाई हमारा इन पुद्गल द्रव्य के प्रति कितना ऐसा है सचमुच विचार कर ये अकेले सुनने की बात नहीं है बसंत भाई हम तो सुन लिया था जिन्होंने कल कहा था ये तो 24 घंटा उपयोग में अखंड धारा बहाने की चीज है अनंत काल से उसमें एक की धारा बहाई है ना ये मेरे कैसा विकल्प जाल चलता है अंदर ऐसा अजपा जाप चलता है इनमें एकत्व बुद्धि का जब एकत्व बुद्धि का अजपा जाप चलता है तो उसी की टक्कर में ये मेरे नहीं है ऐसा अजपा जाप चलाना पड़ेगा अनादि से लेकर आजकल अनंत काल तक ये मेरे हैं का चलाया है तो इसे तोड़ने के लिए कम से कम साल दो साल तो ये चलाना पड़ेगा ना कि ये मेरे नहीं है क्यों मकान बनाने में 10 वर्ष लगते हैं तो तोड़ने में तो नहीं लगते ना 10 वर्ष लेकिन तोड़ने में भी 10 दिन तो लगते हैं ना मलबा कराओ फिर फेंकवाओ करो आखिर तो आखिर आप लोग तो बिल्डिंग तोड़ तोड़ के बनाने वाले लोग हैं कि नहीं है तो तोड़ने में भी समय तो लगता है ना बिल्कुल ही नहीं लगता हो फूंकने से उड़ जाती हो ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं लगता कि नहीं लगता है तो जो तुमने अनंत काल से जो आत्म विकल्प किया है तो उसमें थोड़ा परत्व का विकल्प करना पड़ेगा ना और उससे जो भगवान आत्मा है उस अंदर में आत्म विकल्प करना पड़ेगा ना उस आत्म विकल्प का जो करना ये प्रायोग लब्धि की तैयारी है देवीलाल जी ये करने लायक है अगले पढ़ते पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा आगे गाथा बनाने से काम नहीं चलेगा इसका रटन चलने दो घंटा सुबह शांति से बैठो दो घंटा दोपहर में शांति से बैठो हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता सच बोलना ईमानदारी छाती पे हाथ रख के अपने अपने जवाब दे लेना कभी दो घंटा शांति से बैठ के विचार किया है और किया है तो सच में चित्त कहां गया है उसका भी विचार कर लेना इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम ग्रस्त लोग हैं हम लोगों का उपयोग ऐसे स्थिर नहीं रहता है इसलिए आप प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प पूर्वक स्वाध्याय भी करें और संकल्प पूर्वक आत्मा के चिंतन के लिए शांति से बैठने का प्रयास भी करें एकांत में घंटा दो घंटा विचार करें ऐसे सम्मेलन हो जाएगा दौड़ते दौड़ते हो जाएगा गंभीरता से विचार करें और थोड़ा जगत को भूलें नहीं तो इससे काम नहीं होगा सच्ची बात है हम तो कुछ माथे पर ले लेवे काम मैं तो कहता हूं कुछ नहीं चलो जो समय सार का अनुवाद ही करें तो हमारा छपाएगा कौन नहीं छपेगा तो आग लगा देना क्या फर्क पड़ता है अरे तुम अपने उसके लिए करो ये हमारे दिनेश भाई है ना दाढ़ी वाले देखते ना सफेद दाढ़ी वाले सभी तुमसे कम उम्र के होंगे सफेद दाढ़ी तो उनकी जन्म से ही है इन्होंने सब छोड़ दिया धंधा पानी वगैरह सब 24 घंटा इसमें चलती हुई दुकान वगैरह ये सब बैठे हैं बल्लू भाई अभी तक सब छोड़ दिया और अभी आए तो समय सार अनुशीलन का अनुवाद ला करके ऐसा पिंडा मेरे पास है जैसा मराठी का अनुवाद है मैंने तुमसे किसने कहा था तुम नहीं छपा सकते इसे कि किसने कहा तुम छपाओ तो मैंने किया है बता रहा हूं मैंने कहा वो हमारा तो महावीर पाटिल कर रहा है ना तो वो उसका छप भी रहा है वो छापना शुरू भी किया है न मालूम किससे करा रहा है मैंने नहीं मैं तो अपनी उपयोग की सिद्धि के लिए किया शुद्धि के लिए उपयोग नहीं लगता है यहां वहां जाता है फिर फोटो खींचो लग जाओ धन, सब करो, सब करने शुरू कर दो, गुरुदेव के भजन रत्ना करो का अनुवाद शुरू कर दो, छपेगा नहीं छपेगा सोचो ही मत, अपने उपयोग की सिद्धि के लिए करोगे तो गहरा अध्ययन होगा, सच बोलता हूँ आपको। अरे ये हजारों लोगों से करवाओगे तो किस किस का छपाएंगे, छपाने के विकल्प से करना ही क्यों। आज मेरे पास अमेरिका से आ गया है गुजराती का अनुवाद किया हुआ, कि जून के अंक में जो आपने दिया था वो मेरे अनुवाद किया है, आप देख लेना। तो देखिए तुमसे किसने कहा है तुम करो, हमको अच्छा लगा कर रहे, उपयोग की शुद्धि के लिए ये गहरा स्वाध्याय होगा। संत भाई आप भी करो, मजाक नहीं करता, सच बोलता हूँ आपको, बैठ के लिखोगे तो बहुत उपयोग लगेगा, क्योंकि उपयोग में चंचलता नहीं आएगी, और ये भी पता चलेगा कि ऊंट पर्वत के नीचे आया है कि हम कितना समझते हैं। जब एक एक लेन पे अटक जाएगा ना, अभी छठवीं आदमी गाथा, जब हर एक गाथा पे जाएगा ना और वहाँ एक एक लेन पे अटकेगा उपयोग, कहीं इसका तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, फिर रत्ना का 10 दफे पढ़ो, फिर 25 दफे पढ़ो, तब आएगा ख्याल में। मैं तो देखता हूँ ना, मेरे को भी महीनों लग जाते हैं एक एक गाथा में लिखने में, अब 25-25 दफे रत्ना कर पढ़ता हूँ, फिर निशान लगा के रखता हूँ, घर पे रखता हूँ, वहां रखता हूँ, ख्याल में है ना। फिर जयसेन को देखा, फिर अमृतचंद को देखा, ये देखा, तो मैं इसलिए करता हूँ कि सचमुच अपने उपयोग की सिद्धि के लिए करता हूँ। ये बात है, बढ़िया है, भाषा पे कमांड आप लोगों को अच्छा लगता है, छप जाता है, चल जाता है, रुक जाता है, बढ़िया प्रभावना हो जाती है, लेकिन नहीं छपे तो नहीं छपे, नहीं छपता तो नहीं छपता, नहीं छपता तो भी करता मैं, तो क्यों नहीं करूं, मैं अपने उपयोग की सिद्धि के लिए करूंगा। ये हरेक का अधिकार है, हरेक करो। नहीं नहीं पंडित जी मैं करूंगा तो फिर तुम्हारा फीका पड़ जाएगा, फिर तुम्हें कौन पूछेगा, अरे कहते जाने दे, मेरी ताकत होगी तो मेरी ताकत से मैं जिंदा रहूंगा, तेरी ताकत से तू जिंदा, तू तो कर अपने आत्मा के कल्याण के लिए, कोई किसी की ताकत से जिंदा नहीं है। है कोई जगत में जो किसी को फीका कर दे, सूरज को कौन फीका करेगा, तीर्थंकर को कौन फीका करेगा, इतने आचार्यों ने द्वादशांग वाणी लिखी, तीर्थंकरों को फीका कर दिया क्यों, इतने इतने ग्रंथ से किसी ने किसी को फीका किया है, गुरुदेव सूरज उन्हें कोई फीका कर सकता है। अपने उपयोग की सिद्धि के लिए करो, गहरा स्वाध्याय करना हो तो विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और कोई बात सामने से आती है कि ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है, तो उसे विरोध मत समझो, उस पर गंभीरता से विचार करो, और विचार करके सत्य लगे तो मानो, नहीं लगे तो नहीं मानो, उसने क्या पाप किया है। तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया है रसन भाई कि पंडित जी आपकी बात गलत लगती है, आप इस दृष्टि से इस पर विचार कर लो, तुम्हारा उपकार किया है कि जिस दृष्टि पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया था वो तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। कोई किसी को मानने के लिए बाध्य है, कल्याण करना है तो इन बाहर के बातों में से उपयोग हटाना पड़ेगा। देखो हम गृहस्थ की भूमिका में हैं, तो खाना पीना उठना पहनना कितना तो रखना पड़ेगा, और जिनके पास ऐसी पोजीशन हो सचमुच कि यदि नहीं कमाएंगे तो कल खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें नौकरी भी करना पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा, लेकिन आकुलता इतना है कि 60 पीढ़ी तक भी समाप्त नहीं हो, और फिर भी आकुलता और कहे क्या करे कि नहीं क्या करे, कुछ नहीं, तेरा भव खराब होना है, तेरा भगवान ने भविष्य खोटा देखा है, तूने आयु बंद खोटा कर लिया है, इसलिए ऐसे विकल्प आते हैं। जवाहरलाल जी सोचना कि करुणाजोग दूसरों को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मैं सच बोलता हूँ, मजाक नहीं, आपसे पर्सनल कहता हूँ, क्या कि घर बच्चे सब कमा रहे हैं, एक से एक बढ़िया है, फिर क्या मतलब है, काहे को वहां जा के घुसते हो, क्या है तो आयु बंद ही हो, लगे तक कोई गड़बड़ आयु बंद हो गया लगता है, सब सोचना। द्वारिया जी एक की बात नहीं कहता हूँ, तो मेरे मित्र हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए नाम ले दिया, जिससे खतरा है उससे नाम नहीं ले सकता हूँ, इतनी सी बात है, बाकी सबका विधान मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं बहुत पवित्र हृदय से कहता हूँ, समय सार पे हाथ रख के कहता हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं समझना, ये सच्ची बात है। यदि आत्म गुरुदेव मिले हैं और उनका तत्व ज्ञान आपको मिला है और उसका सच्चा लाभ जीवन में लेना है तो भाई ये उलझने से काम चलेगा नहीं। अभी क्या एक एक क्षण जा रहा है, बिल्कुल उतार पर जिंदगी आ गई है, मौत के मुख में बैठे हैं, ख्याल में आया ना, और फिर भी उपयोग को निरंतर न मालूम कहाँ कहाँ भटकाते हैं बिल्कुल अप्रयोजन भूत बात में। जहाँ हमारा रंत मात चलना नहीं है वहाँ भी उपयोग को भ्रमाते हैं। निश्चय से तो कहीं नहीं चलना है, कर्मबद्ध में जो है वो ही होना है और जिसका जैसा कर्म बना है वैसा ही होना है। और व्यवहार में भी हमें साफ दिखता है कि यहाँ हमारा कुछ नहीं चलना है, और रामाराव में हमारा क्या चलना है और नरसिंहा राव में हमारा क्या चलना है, मुझे बताओ है? वो अर्जुन सिंह और शरद पवार में हमारा क्या चलना है, काहे को उपयोग बनवाते हो देख लो। अरे इससे तो वे महिलाएं अच्छी जो कम से कम अपने पतियों से लड़ती हैं, इस बात के लिए मैं सच बोलता हूं, यदि मैं भी आपसे ज्यादा झंझट करूं ना तो मेरी पत्नी भी लड़ती है। अब काय को माथा करो, काय को माथा मारते हो, काय को माथा मारते हो, अगला समय साल पढ़ो ना, बच्चे भी लड़ते हैं। ज्यादा गड़बड़ करोगे जाना तो अभी आगे बम्बई बैठो, हमारी दुकान संभालने के लिए बहुत जरूरत है आदमी की, फोन पे ही बैठे रहना तो फोन रिसीव इतना झंझट तो बचेगा हमारा। समय साल लिखना हो तो लिखो, और आपको कोई नहीं करता हो तो मैं करूंगा सब व्यवस्था। ऐसे एक ने 100 दफे कहा कितना छपाना है आपको, कितना करना है, मैं सब करूंगा। सबको छोड़ दो, सबके निगाह से हटा दो, आत्मा का कल्याण करना हो तो रहो, नहीं तो झंझट छोड़ दो। सच्ची बात है, हम ऐसे झंझट में उलझेंगे तो हमको औरतें भी बच्चे भी उपदेश देंगे, क्योंकि उपदेश देने लायक हमारी भूमिका है ना, हमने किया है ना वो अपराध, हमने किए फटे है ना गंदगी में, गए है ना कीचड़ में, देनी चाहिए उसमें क्या है। सच्चा आईना कोमल जी कौन है, मैं ये मानता हूं सारी जिंदगी से। पर्वता दूर तारम्य, पर्वत तो दूर से सुंदर दिखाई देते हैं, जो पर्वत हैं अंदर में कितने कांटे हैं, कितने गंदे हैं, कितनी दुर्गमताएं हैं, लेकिन शेर है चीते हैं कितने भयानक हैं, और दूर से देखो तो बढ़िया बगीचे जैसे दिखते हैं, क्यों दूर से तो हरे हरे पत्ते पत्ते दिखते हैं, वो अंदर की गड़बड़ियां थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। ऐसे ही हम दूर से तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, स्टेज पे देखेंगे आप ना कितना महान पंडित है, लेकिन मैं कहता हूं वो आदमी महान है कि जिसके पड़ोसी उसे महान मानते हैं, जिसके बच्चे उसे महान मानते हो, जिसकी पत्नी उसे महान मानती हो, जिसके रिश्तेदार उसे महान मानते हो, जो 24 घंटा साथ में रहते हैं वो महान मानते हो, क्योंकि उसका अच्छे कसली कच्चा चिट्ठा तो वो जानते हैं। और जो अपने